ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आज से शुरू, सभी राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल। 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों का त्रिवार्षिक सम्मेलन आज से शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे। राजस्व मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में जुलाई माह में 14 लोगों की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। और दिल्ली के जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत ढही, मलबे में दबे 3 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉ मनसुख मांडविया भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विभिन्न खंडों या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल है। इनके अलावा माय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक वृक्ष मां के नाम तथा प्राकृतिक खेती जैसे कई अभियानों पर राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होना है। अंतर्राष्ट्रीय संघ की अध्यक्षता में 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों का त्रिवार्षिक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन 7 अगस्त को संपन्न होगा। सम्मेलन का आयोजन 65 वर्षों के बाद भारत में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के समक्ष टिकाऊ कृषि से संबंधित चुनौतियों से निपटना है। सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को पेश करेगा और कृषि अनुसंधान तथा नीति के लिए देश की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन युवा शोधकर्ताओं और अग्रणी पेशेवरों के लिए वैश्विक सहयोगियों के साथ अपने कार्यों तथा नेटवर्क को आगे रखने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर नीति निर्माण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि तथा टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में उन्नति सहित भारत की कृषि प्रगति को दर्शाना है। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
दिल्ली सरकार में राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उन्हें ये जानकारी मिली है कि रोहिणी क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में जुलाई महीने में 14 लोगों की मौत हुई है। राजस्व मंत्री ने बताया कि सरकार के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और अगले 24 घंटे में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौतों के मामले में दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इन मौतों का कारण दिल्ली सरकार की बड़ी आपराधिक लापरवाही है और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा कराई जा रही जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज इस्तीफा नहीं दे देते।
दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम आशा किरण में केवल इस महीने में 14 मृत्यु हुई है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मौत का बेसमेंट दिया और अब दिल्ली में मौत का शेल्टर होम दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार की आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आशा किरण आश्रय गृह का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस आश्रय गृह में स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि भुखमरी से भी बच्चों की यहां मौत हो रही है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस आश्रय गृह में क्षमता से अधिक लोग रह रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण विभाग और विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बिंदु चिन्हित किए गए। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार इस महीने की 21 तारीख को पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण बचाए के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बेहतर कार्य योजना का निर्माण करना है। श्री राय ने बताया कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक विंटर एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि नियमित प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के बाद खाली बची सीटें 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरी जाएंगी। ये बयान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी होने के बाद आया है। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सभी सीटों को भरने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। UGC ने कहा है कि पूरे शिक्षा सत्र के लिए सीट खाली रखना न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है बल्कि अनेक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित करना भी है। प्रोफेसर योगेश सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में UGC के निर्देशों का स्वागत किया। पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी सीटें भरने के लिए कई तरीके अपनाए लेकिन फिर भी 5000 सीट खाली रह गई थीं। UGC की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय नियमित प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR PhD स्कॉलर्स से डॉक्टरेट फेलोशिप 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस फेलोशिप का उद्देश्य सामाजिक और मानव विज्ञान में शोध करने के लिए PhD स्कॉलर्स का समर्थन करना और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से ज्ञान सृजन और नीति निर्माण के लिए नए विचारों, रूपरेखाओं और पद्धतियों में योगदान देने पर केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इच्छुक उम्मीदवार ICSSR की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भारत की सराहना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि UNGA अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटलीकरण और मोबाइल फोन ने 80 करोड़ लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल क्रांति और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई नीतियां पिछले एक दशक में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन को दर्शाती हैं। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशेषकर तकनीकी प्रगति और समर्थन के माध्यम से गरीबों और किसानों को सशक्त बनाया है। UPI आधारित लेनदेन इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कल इस बारे में आंकड़े जारी किए। एक रिपोर्ट।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दर वर्ष आधार पर यूपीआई लेनदेन में 35% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में कुल यूपीआई लेनदेन माह दर माह आधार पर लगभग 4% बढ़कर 14 अरब 44 करोड़ रुपए का हुआ। औसत दैनिक लेनदेन 46 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा है। रुपए क्रेडिट कार्ड से जुड़ने और विदेशों में भी शुरुआत के बाद से यूपीआई भुगतान प्रणाली से प्रतिमाह 60 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था और विश्व की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के अनुकूल नीतिगत पहल के कारण एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। बाला नागेंद्रन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अवैध रूप से बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर 37 में आज जांच में अनियमितताएं मिलने पर बेसमेंट में चल रही एक लाइब्रेरी को सील किया गया। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन से मिले निर्देश के बाद भी शहर में नियमों को अनदेखा कर संचालित हो रहे कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम शहर में अलग अलग क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, बिना मानक शहर में चल रहे अवैध स्विमिंग पूल और बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे झूलों की जांच की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में एक यूट्यूबर को प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल वीडियो में आरोपी को रेलवे ट्रैक पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हुए देखा गया। आरोपी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 250 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और उसके 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। आरपीएफ ने बताया है कि आरोपी की ऑन कैमरा गतिविधियों से पता चलता है कि उसने रेलवे सुरक्षा और संचालन दोनों के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर दिया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत ढह गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें सुबह 12:50 पर इस घटना की सूचना मिली। विभाग ने बताया कि इस इमारत के मलबे में दबे 3 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी घटनास्थल पर पहुंच गया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश को तिरंगा दिलाने में पिंगली वेंकैया के प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करने और इस महीने की 9 से 15 तारीख के बीच तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपनी सेल्फी पोर्टल herghartiranga.com पर साझा करने को कहा है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी कमलकांत पंत का आज गुरुग्राम में निधन हो गया। 64 वर्षीय कमलकांत पंत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्री पंत सितंबर 2020 में केंद्रीय संचार ब्यूरो से निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उन्होंने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग सहित सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में काम किया। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की वर्षा देखी गई। आज का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आज से शुरू। सभी राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल। 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों का त्रिवार्षिक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार में राजस्व मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में जुलाई महीने में 14 लोगों की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।